नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कुवैत अग्निकांड में गोपालगंज निवासी एक और श्रमिक की मौत की पुष्टि। बिहार के दो श्रमिकों की अब तक हो चुकी है मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में अब मनरेगा के तहत मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। राज्य सरकार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल होंगे एनडीए उम्मीदवार। और प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। कुवैत में आग लगने की घटना में बिहार के एक और श्रमिक की मौत की पुष्टि हुई है। इस हादसे में बिहार के अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार मृतक की पहचान गोपालगंज जिले के सपहा गांव निवासी शिवशंकर सिंह के रूप में हुई है। इस हादसे में पहले ही दरभंगा निवासी काले खां की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इधर हादसे में मारे गए 45 लोगों के शवों को लेकर वायुसेना का विशेष विमान आज सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे पर 31 शव उतारे गए, जिनमें से 23 केरल के, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक का था। दुर्घटना में मारे गए 14 मृतकों के शवों को उसी विमान से दिल्ली लाया गया। प्रत्येक शव को उसके संबंधित मूल स्थान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने बिहार के मृतकों के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। प्रदेश में अब मनरेगा के तहत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली के अनुसार बेरोजगारों को मनरेगा के तहत रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी।
ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से अच्छा 2005 और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतय होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं दे। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को, पंचायत के प्रतिनिधियों को और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के आवासीय भत्ते में 1-4% तक की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और बिहार सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले में लंबित अन्य जनहित याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा पीठ ने इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग वाली एनटीए की याचिका पर भी निजी पक्षों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। श्री प्रधान ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नीट परीक्षा से संबंधित तथ्य उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार छात्रों की भलाई के लिए सरकार सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नीट मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का दुरुपयोग किया है और अंकों तथा रैंक में बड़े पैमाने पर धांधली की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री खड़गे ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने 24 लाख युवाओं की आकांक्षाओं को कुचल दिया है। रूपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 21 जून तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल रूपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में आवंटित सरकारी कार्यालय वापस लेने का फैसला किया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। आज बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर समेत 13 जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि कल भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण उष्ण लहर, दक्षिण मध्य भाग में उष्ण लहर, जबकि उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी का पूर्वानुमान है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुई है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसे बिहार के कुछ भाग, विशेषकर उत्तर पूर्व बिहार में आगे बढ़ने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। किशनगंज के ठेंगरा घाट में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 5 दिवसीय हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। भारतीय तीर्थ यात्रियों को हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए सूचना और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। एक रिपोर्ट।
इस बार हज यात्रा के लिए 1,75,000 भारतीय जायरीन मक्का और मदीना पहुंचे हैं। इन लोगों के लिए इस बार भारत सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। भारतीय हज कमेटी के माध्यम से पहुंचे 95% लोगों को मदीना के मरकाजिया क्षेत्र के होटलों में ठहराया गया है। यहां उनके जलपान की व्यवस्था भी की गई है। 33,000 जायरीनों को जेद्दा से मक्का तक पहुंचाने की व्यवस्था के अंतर्गत 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा देने वाला भारत पहला देश बन गया है। बिना महरम के पहुंचने वाली जायरीन के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। इस बार यहां महिलाओं की सहायता के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त की गई हैं। भारतीय हज यात्रियों के लिए पहली बार 24 घंटे बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर को आज पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया। श्री किशोर अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 18 जून को होने वाली डीएलएड प्रथम वर्ष और एसटीईटी के पहले दिन की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर यह फैसला किया गया है। समिति ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। अस्पताल में अब तक 31 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुवैत अग्निकांड में गोपालगंज निवासी एक और श्रमिक की मौत की पुष्टि। बिहार के 2 श्रमिकों की अब तक हो चुकी है मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में अब मनरेगा के तहत मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। राज्य सरकार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल होंगे एनडीए उम्मीदवार। और प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।